दिन भर 10 मार्च दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में मतदान, 23 मई को नतीजे।
फर्स्ट फेज 11 अप्रैल, सेकंड फेज 18 अप्रैल, थर्ड फेज 23 अप्रैल।
इथियोपियन एयरलाइंस का विमान क्रैश, हादसे में 157 लोगों की मौत।
The incident took place at 8:38 when the flight took off from Bole.
खास रिपोर्ट, क्या कश्मीर घाटी में बदल गई है चरमपंथियों की रणनीति? मोहाली में चल रहे मैच का अपडेट भी देंगे, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कीर्ति दुबे से। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण और 19 मई को 7वें चरण का मतदान होगा। वहीं मतदानों की गिनती 23 मई को होगी। लोकसभा के साथ ही ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी होंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव अभी नहीं होंगे। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा से नैरोबी जा रहा इथियोपियन एयरलाइन का विमान आज उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया, जिसके कारण विमान में सवार क्रू समेत 157 लोगों की मौत हो गई। एयरलाइन ने बताया कि इस विमान में 30 से अधिक देशों के लोग सवार थे। बोइंग 737 विमान का उड़ान भरने के 6 मिनट बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। हालांकि अभी तक क्रैश के कारणों का पता नहीं चल सका है। फ्लाइट ग्लोबल के समूह संपादक मैक्स किंग्सले जॉन्स ने बीबीसी से कहा कि इथियोपियन एयरलाइन का अच्छा रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने कहा, अफ्रीका की एयरलाइन में इथियोपिया को बेहद खास माना जाता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया की एयरलाइन इथियोपिया की ओर देखती हैं। इसका बहुत अच्छा नेटवर्क है और काम के मामले में काफी सम्मान रहा है। इस एयरलाइन के पास कई तकनीकी वाले विमान हैं। ये थे फ्लाइट ग्लोबस समूह संपादक मैक्स किंग्सले के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने उनकी सरकार के प्रति ईमानदार रहने के लिए सुरक्षा बलों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने अमेरिका और विपक्षी नेता ख्वान गाइदो की तख्तापलट की कोशिशों को नाकाम किया है। कराकस में ही उनकी रैली में उन्होंने विपक्ष पर देश के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर साइबर हमला करने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिका में ख्वान गाइदो के प्रतिनिधित्व के राजनीतिक परामर्शदाता फ्रांसिसो मार्खेजा ने कहा कि नेता इस दौरान सेना के 500 से ज़्यादा सदस्य विरोध जताते हुए कोलंबिया चले गए हैं। दो महीने पहले तक वेनेजुएला में ऐसा नहीं सोचा जा सकता था। अवैध मादुरो का कोई भविष्य नहीं था। उनके पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और वेनेजुएला के लोगों के लिए कोई समाधान नहीं है। ये थे अमेरिका के ख्वान गाइदो से जुड़े एक राजनीतिक परामर्शदाता के शब्द। देश के इंटरनेट को बाकी दुनिया से अलग रखने की रूसी सरकार की योजना के खिलाफ मॉस्को में प्रदर्शन हो रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदर्शन शुरू होने के पहले पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में ले लिया था। सरकार का कहना है कि डिजिटल संप्रभुता बिल को संसद में पास कराने की आवश्यकता है ताकि अमेरिका में सर्वर पर रूस की निर्भरता कम हो। आलोचकों का कहना है कि इस बिल के तहत इंटरनेट पर सरकार विरोधी संदेश पोस्ट करना अपराध होगा। यह बिल सेंसरशिप की कोशिश है। संवाददाताओं का कहना है कि रूसी सेवा अधिकतर जानकारी इंटरनेट से ही लेते हैं, ना कि सरकारी टीवी चैनलों से। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ब्रिटिश सरकार ने सीरिया जाकर आईएस में शामिल होने वाली दो महिलाओं की नागरिकता रद्द कर दी है। संडे को टाइम्स अखबार के अनुसार लंदन की दोनों बहनों के 5 बच्चों ने सीरिया के शरणार्थी शिविर में रह रहे बच्चों को नागरिकता रद्द कर दी थी। ये है बीबीसी समाचार।
दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आ गया है। चुनाव आयोग ने आज 17वीं लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। शाम 5 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तारीखों का ऐलान किया। आम चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में होंगे। आपको याद होगा 2014 में 9 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। नतीजे का ऐलान 23 मई को होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को सुनिए।
फर्स्ट फेज 11 अप्रैल, सेकंड फेज 18 अप्रैल, थर्ड फेज 23 अप्रैल, फोर्थ फेज 29 अप्रैल, फिफ्थ फेज 6 मई, सिक्स्थ फेज 12 मई, फेज 7 19 मई एंड ऑल काउंटिंग्स 23 मई।
ये वो तारीखें हैं जब वोट डाले जाएंगे। कुल 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग की तैयारियों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आम चुनाव में 90 करोड़ लोग वोट डाल सकेंगे। 8 करोड़ 43 लाख नए मतदाता इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कुल 10 लाख मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। हर पोलिंग बूथ पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 4 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी आम चुनाव के साथ ही होंगे। सुनिए।
The commission has also taken into account that the tenure of legislative assemblies of states of Andhra Pradesh, Arunachal, Odisha and Sikkim will expire on 18th June, 1st June, 11th June and 27th May. The commission has decided to hold elections for these assembly legislative assemblies for these 4 states simultaneously with the general elections to the 17th Lok Sabha.
मुख्य चुनाव आयुक्त बता रहे थे कि इन सभी चारों विधानसभाओं का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, इसलिए लोकसभा चुनाव के साथ ही यहां विधानसभा के लिए भी चुनाव होंगे। ये भी अनुमान था कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव की तारीख का भी ऐलान कर सकता है, लेकिन आयोग ने कहा कि अभी वहां सिर्फ लोकसभा चुनाव ही होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कहा वो सुनाते हैं।
The commission has decided at this stage to announce only schedule of the parliament elections in Jammu Kashmir. The commission will be regularly and on real-time basis monitoring the situation in Jammu Kashmir and continue to take inputs from all necessary quarters and decision-taking holding legislative assemblies in Jammu Kashmir will be taken soon.
मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि जल्दी ही इसके बारे में फैसला लिया जाएगा और वो जानकारियां जुटाते रहेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं?
जी वात्सल्य जी, कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ खास लोगों की प्रतिक्रियाएं बताना चाहेंगे। जैसे ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने 17वें लोकसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा की, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत बाद कहें या
प्रेस
कॉन्फ्रेंस के दौरान ही तकरीबन 9 ट्वीट किए।
जी,
पहले ट्वीट में उन्होंने देश की जनता से अपील करते हुए कहा कि वो 2019 लोकसभा चुनावों में जरूर भाग लें। उनको आशा है कि इस चुनाव में ऐतिहासिक मतदान होगा। इसके बाद फिर उन्होंने एक अगला ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, सुरक्षा बलों और चुनाव आयोग से जुड़े सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत को चुनाव आयोग पर बहुत गर्व है जो इतने सालों से चुनाव कराता आया है। वासले जी, सिर्फ वो यही नहीं ठहरे। प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने अगले ट्वीट में जो पिछली यूपीए सरकार थी उस पर कसकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 में जनता ने यूपीए के खिलाफ भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और नीतिगत पक्षपात के कारण उसको खारिज कर दिया था। देश के लोगों का उस समय आत्मविश्वास गिर चुका था और भारत के लोग इस निराशावाद से छुटकारा,
यानी प्रचार की शुरुआत हो गई एक तरीके
बिल्कुल
से,
ट्विटर से ही हो गई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है उसमें एक फिल्मी गीत के साथ एक राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया गया है, जिसके साथ कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो कुछ यूं है वात्सल्य जी, ये बिगुल बजा है, अब जनता की बारी है, झूठ से लड़ने की पुरजोर तैयारी है, झूठों के इस शासन को हम देंगे मात, कमर कसी है हमने, अब की जीत हमारी है। जी। अब जीत किसकी होगी ये तो जनता तय करेगी।
जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद शाहिद, दोनों दलों के मुख्य दलों की बात आपने की। दावे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से किए जा रहे हैं जैसा मोहम्मद शाहिद बता रहे थे, लेकिन क्या चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद चुनाव प्रचार का मूड भी कुछ बदलेगा? मैंने ये सवाल किया वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राधिका रामाशेषन से।
जी देखिए, अभी जो आज के जो हालात है उसमें बीजेपी का डेफिनेटली अपर हैंड है कैंपेनिंग के लिहाज से। उनके पास लीडर है जो आज के तारीख में सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेटर है हमारे इंडिया में, तो उनका जो कैंपेन है वो एकदम ऑन कोर्स चल रहा है, जोरों शोरों से चल रहा है, अग्रेसिव कैंपेन है। कुछ ना कुछ नया पॉइंट्स लेते हैं, हम और आप उस पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि कितना सच्चाई है और कितना एग्जैजरेटेड है, लेकिन मैं उसकी उसमें नहीं जा रही हूँ। मैं तो बिल्कुल जो इम्पैक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर उसके लिहाज से बात कर रही हूँ। और मैंने एक और स्ट्रैटेजी नोटिस किया है, कल मोदी जी की जो रैली हुई थी ग्रेटर नोएडा में, इनॉग्रेशन था, रैली नहीं था, उस समय उनका पूरा फोकस बिजली और पानी सड़क इसी पे था पूरा, और अंत में आके उन्होंने राष्ट्रवाद की बात की और पाकिस्तान के संबंध में जो किया था भारत ने अंदर घुस के टेररिस्ट कैंप पे जो स्ट्राइक वगैरह किया उस पे उन्होंने बात किया और ऑपोजिशन की बहुत कड़ी आलोचना की, लेकिन वो एकदम आखिर में आ रहा था। तो मुझे लगता है यही स्ट्रैटेजी जो 2014 में अपनाया वही इस बार भी अपनाएंगे। खुद जो जिसको कहते हैं हम इन्फ्लेमेटरी इश्यूज, जो लोगों की सेंटिमेंट्स भड़काते हैं, फीलिंग्स भड़काते हैं, जो पॉलिटी को पोलराइज करते हैं, उस पे मोदी जी खुद नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके बाद जो भी लीडर्स आते हैं, जो भी एमपीज आते हैं या कैंडिडेट्स हैं, वो उन पे बहुत खुल्लम खुल्ला बोलेंगे।
जी मैं विपक्ष की बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से विपक्ष ने रोजगार का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, एक हद तक वो कामयाब हुआ था मोदी सरकार को घेरने में। दूसरा एक महागठबंधन शक्ल ले रहा था, उत्तर प्रदेश में तो बन गया था, बाकी देश में भी इसकी कोशिश हो रही थी। विपक्ष का अब आप क्या देखती हैं, विपक्ष कहाँ खड़ा है फिलहाल?
जी विपक्ष की हाल बहुत अच्छी नहीं है, मैं कह सकती हूँ आज के तारीख में। राहुल गांधी रोज रफाल करप्शन की बात तो जरूर कर रहे हैं और अन्य कांग्रेस नेता बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अभी देखेंगे दौरान में गठबंधन तो हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो कास्ट अरिथमेटिक के लिहाज से देखा जाए, दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी पावरफुल है, लेकिन मायावती ने जरूर आलोचना की सरकार की, उन्होंने सवाल भी पूछे ये जो पाकिस्तान में हुआ था स्ट्राइक और उसके पहले जो 40 जवान मारे गए उनके बारे में, लेकिन जो अग्रेशन, जो तीव्रता मैं देखना चाहती हूँ ऑपोजिशन में, वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। अभी भी अलायंसेस ठीक तरह से जम नहीं रहे हैं। आप दिल्ली की ही उदाहरण लीजिए, कभी एक दिन बोलते हैं कि आपके साथ नहीं होगा, दूसरे दिन बोल रहे हैं शायद होगा।
जी आज 10 मार्च है, 23 मई को नतीजे आने हैं, एक रिले रेस की तरह है, 7 चरण इसमें है। आपको क्या लगता है कि लगातार यही मूड बना रहेगा या आगे चीजें बदलेंगी?
अब मैं कहती हूँ कि जो गेंद है वो विपक्ष के पाले में है पूरी तरह, बीजेपी का समझ आ गया बीजेपी क्या खेलने वाली है। हो सकता है दूसरा स्ट्राइक हो सकता है, मैं नहीं कह रही हूँ होगा, लेकिन हो सकता है, उसको एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है उसके जो कॉन्टोर्स है हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। विपक्ष क्या करेगी, विपक्ष की नैरेटिव क्या होगी, क्या फिर से हम किसानों की जो हालात है उसको फोरग्राउंड कर पाएगी, क्या जो छोटे व्यापारी हैं जिस ढंग से जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन ने उनको तबाह करके रखा है वो दोबारा ले आ पाएंगी, क्योंकि वो हालात बिल्कुल बदले नहीं है। ऐसे नहीं कि किसान के हालात में बहुत सुधर आ गई है एक महीना या दो महीना, बिल्कुल नहीं। ऐसे नहीं कि छोटे व्यापारों के हालत में सुधर आ गई है, बिल्कुल नहीं। आप उनसे बात करो तो आज भी उतने ही परेशान है जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन से जितने 6-7 महीने पहले थे।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन। आम चुनाव के ऐलान से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप आ सकते हैं bbchindi.com पर।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। इथोपियन एयरलाइंस का एक विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। एयरलाइंस के मुताबिक ये विमान इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से कीनिया की राजधानी नैरोबी जा रहा था। इसमें 33 देशों के कुल 157 लोग सवार थे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता अभिजीत श्रीवास्तव।
इथोपियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान ने स्थानीय वक्त के मुताबिक आज सुबह करीब 8:30 बजे अदिस अबाबा से उड़ान भरी। 6 मिनट बाद ही विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। नैरोबी जा रहे इस विमान के बारे में अगली खबर इथोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद ने ट्विटर पर दी। उन्होंने पीड़ितों के परिजन के प्रति संवेदनाएं जताई। थोड़ी देर बाद एयरलाइंस ने जानकारी दी कि विमान में सवार सभी 157 लोगों की मौत हो गई है। उधर नैरोबी में कीनिया के ट्रांसपोर्ट मंत्री जेम्स मचारिया ने मीडिया को इस बारे में जानकारी दी। ट्रांसपोर्ट मंत्री कह रहे थे कि ये घटना 8:38 पर हुई। विमान ने बोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और 6 मिनट बाद ही ये रडार से गायब हो गया। इस विमान में 149 यात्री और चालक दल के 8 सदस्य सवार थे। ट्रांसपोर्ट मंत्री जेम्स ने बताया कि एयरपोर्ट पर 2 आपातकालीन केंद्र बनाए गए हैं। विमान में सवार रहे अपने रिश्तेदार नैरोबी एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे जस्टिन नामक शख्स ने बताया, जब हम एयरपोर्ट पहुंचे हमने आगमन बोर्ड को देखा। हमने पाया कि विमान सही वक्त पर उतर चुका है। बोर्ड पर यही दर्ज था। हमें भरोसा था कि हमारे रिश्तेदार भी बाहर आएंगे। कुछ देर बाद हमने फेसबुक पर विमान दुर्घटना की खबरें देखी। हादसे की वजह क्या थी ये अभी साफ नहीं हो सका है। उधर एयरलाइंस ने बताया कि हादसे की जगह पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने कहा कि वो हालात पर करीबी निगाह बनाए हुए हैं। ये विमान बीते साल जुलाई में ही एयरलाइंस में शामिल हुआ था। इसी मॉडल का एक और विमान 5 महीने पहले इंडोनेशिया के करीब क्रैश हो गया था। उस विमान में 190 लोग सवार थे।
रिपोर्ट सुना रहे थे अभिजीत श्रीवास्तव।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
और अब एक खास रिपोर्ट। भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आत्मघाती हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई भी तेज हुई है, लेकिन कुछ और हमले भी हुए हैं। इस बीच ये सवाल भी सामने है कि 14 फरवरी को हुआ हमला चरमपंथियों की रणनीति में कोई बदलाव दिखाता है। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने घाटी में लोगों से बात करके इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की है। सुनिए उनकी रिपोर्ट।
कश्मीर घाटी, यहाँ सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ लगभग रोज हो रहा है, लेकिन 14 फरवरी को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में हुआ आत्मघाती हमला रोज के मामूल से अलग था और काफी घातक, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवानों की जाने गईं। इस हमले ने भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था।
मैं एसएसपी शोपियन बोल रहा हूँ। एसएसपी शोपियन रफी भट्ट, आप कपड़े उतार के हथियार डाल के बाहर आ जाओ।
हमला जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हुआ था और जिस जगह पर यह हुआ था वहां से 20 वर्षीय हमलावर आदिल डार का घर केवल 10 किलोमीटर दूर था। काकापुरा गांव में अपने घर से 1 साल पहले फरार होने के बाद आदिल डार जैश मोहम्मद में शामिल हो गया था और उसने बंदूक उठा ली थी। हमले के 2 हफ्ते बाद ठंड और बारिश के बीच हम उसके घर पहुंचे। डार का घर 2 मंजिला इमारत है जहां पहली मंजिल पर परिवार इकट्ठा है। यह किसानों का परिवार है। आदिल के पिता गुलाम हसन डार ने कहा कि लाश घर नहीं आई, बेटे को दफनाया नहीं, इसलिए अधूरापन लग रहा है। जब मैंने पूछा कि सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत पर उन्हें अफसोस नहीं है तो उन्होंने कहा,
सैन्य कर्मी भी अपना काम करने आते हैं, उनके परिवार भी उनके नुकसान से पीड़ित हैं। हमारी तरह कुछ परिवारों को अपने बेटों के शव भी नहीं मिले होंगे, वो भी इस दर्द को महसूस कर रहे होंगे।
ये मंजर है पत्थरबाजी का, जिसमें अक्सर घाटी के युवा शामिल होते हैं। क्या इन्हीं में से कुछ युवा बाद में बंदूक उठा लेते हैं? अधिकारियों का कहना है कि आदिल एक पत्थरबाज था जो बाद में जैश में शामिल हो गया, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि वो एक जख्मी पत्थरबाज की मदद को गया था जिसके दौरान उसकी टांग में गोली लगी, जिसकी वजह से वो 1 साल बिस्तर पर रहा। उसे जलील होने का एहसास हुआ और पिछले साल फरवरी में एक दिन वो अचानक घर छोड़कर चला गया। आदिल का संबंध जैश से था, लेकिन पुलवामा सहित पूरे दक्षिण कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन चरमपंथी संगठन सबसे ज्यादा सक्रिय है। हिजब में स्थानीय लड़के भर्ती होते हैं। पाकिस्तान से चलने वाले जैश मोहम्मद और लश्कर तोयबा की गतिविधियां यहां कम हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का नेतृत्व कभी टीचर रहे 33 वर्षीय रियाज नायकू के हाथों में है। नायकू का नाम घाटी के मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर है।
मैं इस वक्त बेगपुरा गांव में हूं, जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है, और इस वक्त जो मैं जिस घर में आया हूं वो रियाज नायकू का घर है, जो हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर हैं, और उनके कुछ यहां पर रिश्तेदार हैं, उनसे हम मिलने आए हैं।
नायकू के पिता असदुल्ला नायकू कहते हैं कि जब भी कोई इनकाउंटर होता है उन्हें लगता है उनका बेटा मरने वालों में शामिल होगा।
मुसलमान
एक मुस्लिम होने के नाते ये गर्व की बात है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है। अगर वो ड्रग्स या अवैध गतिविधियों में शामिल होता तो हमारा नाम कलंकित हो जाता। हमें राहत मिली है कि वो एक सही गतिविधि में शामिल है।
7 साल पहले गणित में ग्रेजुएशन करने के बाद रियाज नायकू ने हथियार उठा लिए। वो गणित में कश्मीर से बाहर जाकर आगे पढ़ाई करना चाहता था। इसके परिवार ने अब मान लिया है कि घर में देर या सवेर नायकू की लाश ही आएगी। कश्मीर में तैनात सरकारी अधिकारी जानते हैं और मानते हैं कि स्थानीय लोगों की मदद इन लोगों को हासिल है। डार का परिवार हो या नायकू का, ये साधारण लोग हैं, लेकिन इनकी संतानें जब बंदूक उठाती हैं या मारी जाती हैं तो समाज में उन्हें सम्मान मिलता है। चरमपंथियों को स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग होता है। अगर लोकल लोग उन्हें पनाह न दें, उनके खाने पीने का इंतजाम ना करें और पुलिस के आने से पहले उन्हें आगाह ना करें तो हिंसक आंदोलन टिक नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा बलों का भी स्थानीय लोगों में मुखबिरों का एक बड़ा नेटवर्क है। इनकाउंटर उसी समय होता है जब कोई लोकल मुखबिर मिलिटेंट्स की गतिविधियों की खबर पुलिस को देता है। आंख मिचौली में स्थानीय लोगों की मदद होने की वजह से डार या नायकू जैसे लोग अक्सर बच निकलते हैं। इनकाउंटर के समय गांव वाले कभी उन्हें फरार होने में उनकी मदद करते हैं और कभी पुलिस के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हैं और कभी पत्थरबाजी करने लगते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से हमने पूछा कि क्या पुलवामा हमला ये दर्शाता है कि चरमपंथियों की रणनीति बदली है।
जो मेरी जानकारी है कि पाकिस्तान की जो में जो बैठे हुए इनके आका है, उनका एक प्रेशर आया कि भाई तुमने तो बड़ी बेइज्जती करा दी और हमारा जो किया हुआ काम था 10 साल का खत्म हो गया, तुम कुछ बड़ा करो। तो ये चेंज ऑफ स्ट्रेटजी इन प्रेशर ऑफ पाकिस्तान एंड आईएसआई हुआ है।
घाटी में सबसे अधिक सक्रिय जैश मोहम्मद, लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन अलग अलग इस्लामी विचारधारा के संगठन हैं। जैश और लश्कर पाकिस्तानी हैं। अधिकारी कहते हैं कि भारतीय कश्मीर में इनका वजूद है, जिसमें कुछ लोग लोकल होते हैं लेकिन अधिकतर सरहद के उस पार से आते हैं। इन तीनों संगठनों से मिलकर बनी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल पाकिस्तान में है, जिसमें मसूद अजहर और हाफिज मोहम्मद सईद जैसे लोग शामिल हैं। विचारधारा के आपसी मतभेद के बावजूद इनके बीच अक्सर ऑपरेशनल तालमेल नजर आता है। अधिकारियों के अनुसार पुलवामा में ऐसा ही हुआ। क्या आगे भी इस तरह के बड़े हमले हो सकते हैं? दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के आयमान माजिद ने कश्मीर में अलगाववादी हिंसा पर गहरा रिसर्च किया है। वो कहते हैं,
आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा हमें देखने को आएगा ये ऐसे अटैक्स, डिस्पाइट मीडिया बहुत कुछ कह रहा है कि ऐसे अटैक्स फिर से कश्मीर में हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज़ वंस इन अ ब्लू मून टाइप ऑफ अटैक।
पुलवामा हमले की जांच जारी है, मगर क्या ये सरकार की रणनीति की नाकामी को दर्शाता है? राज्यपाल सत्यपाल मलिक मानते हैं कि पुलवामा हमला ऐसे समय में हुआ जब ये लग रहा था कि हालात बेहतर हो रहे हैं।
अटैक तो पहले भी किए हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से इस तरह का हमारे सोच में भी नहीं था, क्योंकि नई भर्ती रुक गई थी, टेररिस्ट की पथराव भी रुक गया था, थोड़ा लोगों का टेंपर भी डाउन हो रहा था, पंचायत के चुनाव हो गए थे, तो इस वक्त लगता नहीं था।
कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले इब्राहिम वानी कहते हैं कि हिंसा का जवाब हिंसा से ही मिलता है।
2018 में क्लेम किया गया कि बहुत सारे लोकल मिलिटेंट्स मर गए, मारा गया उनको, और आइडिया था मिलिट्री सक्सेस का, बट पुलवामा ने शायद वो डिसप्रूव किया है। अगर आप एक लैंग्वेज ऑफ वायलेंस इस्तेमाल करेंगे, शायद एक लैंग्वेज ऑफ वायलेंस ही वापस मिलेगा।
अधिकारी जानते हैं कि मुठभेड़ में एक मिलिटेंट मरता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में सक्रिय हथियारबंद नौजवानों की संख्या एक समय में 150 से 250 तक सीमित रहती है। मिलिटेंट्स जानते हैं कि ये संख्या सुरक्षा बलों को परेशान करने और उन्हें एंगेज रखने के लिए काफ़ी है। अधिकतर हमले दक्षिण कश्मीर में होते हैं, जिनमें सुरक्षा कर्मियों की मौतें बड़ी संख्या में होती हैं। ये मैदानी इलाका है जहां जंगल भी कम होते हैं, इसलिए लोकल हिजबुल मुजाहिदीन ज्यादा सक्रिय है। लश्कर और जैश के मिलिटेंट्स यहां मुश्किल में पड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें कश्मीरी भाषा नहीं आती। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक उत्तरी कश्मीर में जैश और लश्कर के मिलिटेंट्स अधिक होते हैं। वो यहाँ के पहाड़ और जंगल के रस्ते से वाकिफ होते हैं और वो फौजी तरीके से ट्रेनिंग हासिल किए हुए होते हैं और हिज्ब के लड़कों के मुकाबले ज्यादा अनुभवी होते हैं। हाल में हंदवाड़ा में एक इनकाउंटर 72 घंटे जारी रहा, जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों की मौत ज्यादा हुई। इसका कारण बताते हुए एक पत्रकार ने कहा कि वहां पाकिस्तानी सक्रिय थे, उन पर काबू पाना मुश्किल होता है। आदिल के पिता गुलाम हसन डार एक आत्मघाती हमलावर के पिता हैं। वो बार बार इन हालात का जिम्मेदार केंद्र और राज्य के नेताओं को ठहराते हैं। वो अपने बच्चे को मिलिटेंट बनने से रोक न सके, लेकिन उनके विचार में हिंसा को रोकने का एक ही तरीका है और वो है भारत, पाकिस्तान और कश्मीरियों के बीच बातचीत। डार के अनुसार आखिर में हिंसा में मरता है इंसान। राज्यपाल ने स्वीकार किया कि कश्मीर में जारी हिंसा का एक ही हल है और वो है बातचीत की दोबारा शुरुआत, लेकिन उनके अनुसार पहले हालात बेहतर हों, पाकिस्तान मिलिटेंट्स को सहयोग देना बंद कर दे और तब बातचीत का सिलसिला शुरू किया जा सकता है। जुबैर अहमद, बीबीसी श्रीनगर।
बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की खास रिपोर्ट पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और इस बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मोहाली में खेले जा रहे वनडे मुकाबले का अपडेट देने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं आदेश कुमार गुप्त।
जी देखिए, बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है
जी, और मुकाबला तो शानदार चल रहा है। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले 359 का जो टारगेट है, सेफ है भारत के लिए?
जी देखिए, अभी तक जो स्थिति है 189 रन है और तीसरा विकेट अभी जैसे ही आपने बात शुरू की गिरा है, और ये जो एक विकेट मिला है ये भारतीय टीम के लिए शायद टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि उस्मान ख्वाजा और पीटर हैंड्सकॉम जिस तरह से ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, अपने शतक की तरफ बढ़ते हुए लग रहे थे,
और खासतौर पर 12 रन पर जब दो विकेट ऑस्ट्रेलिया ने गंवा दिए थे तो लग रहा था कि मैच एक तरफा हो जाएगा।
जी बिल्कुल, और इन्होंने ये दिखा दिया कि विकेट बिल्कुल बैटिंग विकेट है। जिस तरह से रोहित शर्मा और शिखर धवन ने आज भारत के लिए पहले विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी की, रोहित शर्मा के बल्ले से 95 रन निकले, शिखर धवन का बल्ला लंबे समय बाद बोला क्योंकि वो
14 पारियों से खामोश था।
जी हाँ, पिछली 6 पारियों में तो उनका सर्वाधिक स्कोर केवल 28 था, और पिछली 6 पारियों में यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए 3 वनडे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 3 वनडो में उनके बल्ले से केवल 1 अर्धशतक निकला था। तो शिखर धवन ने 143 रन बनाए और कप्तान विराट कोहली की चिंता दूर हुई है। रही बात भारतीय टीम की, तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। विश्व कप से पहले केवल एक मैच और होगा, हार जीत लगी रहती है, लेकिन कप्तान की चिंता समाप्त हुई है। और रही बात गेंदबाजी की, तो पिछले काफी समय से भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन आज के मुकाबले की बात की जाए तो वात्सल्य जी, जैसे कि अभी हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे, अब दर्शकों को और लुत्फ आएगा क्योंकि अब यह वनडे से 2020 की शक्ल में चला जाएगा
जी,
क्योंकि आस्किंग रेट काफी ज्यादा है,
9 से ऊपर पहुंच चुका है, 9.15 का आस्किंग रेट चाहिए। मैं केवल बस आखिरी आपसे जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है ये मैच एक तरफा हो जाएगा यहाँ से या भारत जीत रहा है?
जी देखिए, भारत जीत की तरफ बढ़ेगा क्योंकि जब
तेजी से रन बनाने की कोशिश होगी तो आ जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त, और अब चलते चलते मुख्य समाचार कीर्ति दुबे से।
समाचार बीबीसी समाचार। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि आगामी चुनाव 7 चरणों में होंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव और 19 मई को 7वें चरण का चुनाव होगा। इन मतों की गिनती 27 मई को होगी। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा से नैरोबी जा रहे इथोपिया एयरलाइन का विमान आज उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया, जिसके कारण विमान में सवार क्रू समेत 157 लोगों की मौत हो गई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने उनकी सरकार के प्रति ईमानदार रहने के लिए सुरक्षा बलों की तारीफ की है। देश के इंटरनेट से बाकी दुनिया को अलग रखने की रूसी सरकार की योजना के खिलाफ मॉस्को में प्रदर्शन हो रहे हैं। बीबीसी समाचार।
और हम बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का दूसरा विकेट नहीं गिरा है, एम्पायर ने रिव्यू में अपना डिसीजन वापस ले लिया है। दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी कपिल देव सिंह के हाथ। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। नमस्कार।